हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद प्रिल प्रभुपद, गुरु त्रिल प्रभुपाद के श्री श्री कृष्ण बलराम के श्री श्री राधा श्याम सुंदर के श्री श्री निताई गौर सुंदर के श्री श्री गुरु एम गौरांग के ओम अज्ञान्ति मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंध दीन बंध जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतर्पंगर मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्व पदां भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंध अध्याय 21 श्लोक 42। भागवतम संस्कृत में लिखा गया है और संस्कृत शब्द का ही अर्थ हिंदी में या अंग्रेजी में अन्य भाषा में लिखा गया है। भागवत समझने में संस्कृत सहायक है, बाधक नहीं है, इसलिए संस्कृत शब्दों को भी पकड़ने का प्रयास करना है जितना समझ सकते हैं। ये मन में नहीं बैठा लेना चाहिए कि संस्कृत बाधक है, बहुत सुविधा होती है। श्लोक के शब्दों पर ही श्रील प्रभुपाद जी भावार्थ लिखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यत् ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनम् श्रद्धा तपो मंगलमौन संयमहि समाधिना बिभ्रतिहार्थ दृष्टये यत्रेदमादर्श इवावभासते यत् ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनम् श्रद्धा तपो मंगल मौन संयमहि समाधिना बिभ्रतिहार्थ दृष्टये यत्रेदमादर्शैवावभासते यत् ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनम् श्रद्धा तपो मंगल मौन संयमहि समाधिना बिभ्रतिहार्थ दृष्टये यत्रेदमादर्शैवावभासते यह जो ब्रह्म ब्राह्मण संस्कृति नित्यम शाश्वत रूप से विरजम निष्कलं सनातनम अनादि श्रद्धा श्रद्धा तप तपस्या मंगल सुख मौन मुक्त रहना संयम मन तथा इंद्रियों को वश में करते हुए समाधि पूर्ण मनोयोग से विवृत प्रकाशित करता है और जैसे उसने किया अर्थ वेदों का असली प्रयोजन दृष्टय प्राप्त करने के प्राप्त करने के उद्देश्य से यत्र जिसमें यह इदम यह आदर्श दर्पण में इव सत्री औभाषते प्रकट होता है। अनुवाद और तात्पर्य अनुवाद ब्राह्मण संस्कृति में ब्राह्मणों का दिव्य स्थान शाश्वत संरक्षण क्योंकि वेदों के आदेशों को श्रद्धा तप शास्त्रीय निर्णय मन तथा इंद्रिय निग्रह एवं ध्यानपूर्वक स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार जीवन का वास्तविक लक्ष्य उसी प्रकार प्रकाशमान हो जाता है जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण किसी का मुख भली भांति प्रतिबिंबित रहता है। तात्पर्य पिछले श्लोक में बताया गया था कि एक जीवित ब्राह्मण को खिलाना अग्नि में आपूर्तियां डालने से श्रेष्ठ है। अब इस श्लोक में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि ब्राह्मणत्व क्या है और ब्राह्मण कौन है। इस कलयुग में इस तथ्य का लाभ उठाया जा रहा है कि ब्राह्मण भोजन कराना यज्ञों के करने से श्रेयस्कर है और इस तरह ऐसे लोग स्वयं को ब्राह्मण भोजन के अधिकारी बताने लगे हैं जो ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए किंतु जिनमें ब्राह्मणों के एक भी गुण नहीं रहते। ऐसे व्यक्तियों तथा असली ब्राह्मणों में अंतर करने के उद्देश्य से महाराज पृथ्वी ब्राह्मण तथा ब्राह्मण संस्कृति का यथातथ वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को प्रकाशहीन अग्नि बनकर अपनी स्थिति का लाभ नहीं उठाना चाहिए। ब्राह्मण को वेदों के निर्णय में भली भांति अभिज्ञ होना चाहिए जैसा कि भगवत गीता में 15:15 कहा गया है वेदस्य सर्वैरहमेव विद्या। वैदिक निर्णय या वेदांत ज्ञान कृष्ण ज्ञान है। यह तथ्य है कि जिस रूप में श्री कृष्ण है उसके जान लेने से मनुष्य पूर्ण ब्राह्मण हो जाता है जैसा कि भगवत गीता में उल्लेखित है जन्म कर्म जमे दिव्यम एवं योगेद तत्व। जो ब्राह्मण श्री कृष्ण को अच्छी तरह जान लेता है वह सदैव दिव्य स्थिति में रहता है। इसकी विपुष्टि भगवत गीता 14:26 हुई है। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणं समतीते दान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरे अनन्य भक्ति योग के परायण है किसी स्थिति में उससे गिरता नहीं। वह अविलंब त्रिगुणमयी माया का उल्लंघन करके ब्रह्मभूत हो जाता है। अतः भगवान कृष्ण का भक्त वास्तविक पूर्ण ब्राह्मण है। उसकी स्थिति दिव्य होती है क्योंकि वह बद्ध जीवन के चारों दोषों से मुक्त होता है। ये दोष है त्रुटि करना मोहग्रस्त होना धोखा देना तथा अपूर्ण इंद्रियों वाला होना। पूर्ण वैष्णव या कृष्ण भक्त सदैव दिव्य स्थिति में रहता है क्योंकि वह कृष्ण तथा उसके प्रतिनिधि के रूप में बोलता है। क्योंकि वैष्णव लोग श्री कृष्ण के ही स्वर में बोलते हैं, अतः वे जो कुछ भी कहते हैं वह चारों दोषों से रहित होता है। उदाहरण, श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उन्हीं का चिंतन करे, उन्हीं का भक्त बने, उन्हीं को नमस्कार करे और पूजा करे और अंत में उन्हीं की शरण में जाए। ये भक्ति कर्म दिव्य है और चारों दोषों से रहित है। अतः जो भी भगवान कृष्ण का एक निष्ठ भक्त है और इस संप्रदाय का उपदेश कृष्ण के आदर्शों के अनुसार देता है वह विरजम होता है। अतः असली ब्राह्मण या वैष्णव वेदों के निर्णय पर या कि भगवान द्वारा किए गए वैदिक ज्ञान पर निर्भर रहता है। केवल वैदिक ज्ञान से हम परम सत्य की वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं, जो श्रीमद् भागवतम के अनुसार तीन रूपों में प्रकट होते हैं, निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा श्री भगवान। यह ज्ञान सनातन काल से चला आ रहा है और ब्राह्मण या वैष्णव संस्कृति इसी सिद्धांत पर आश्रित है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वेदों का अध्ययन न केवल ज्ञानार्जन के लिए करे, वरन इस ज्ञान तथा इन क्रियाकलापों को श्री भगवान तथा वेदों के शब्दों में श्रद्धा सहित फैलाने के लिए करे। इस श्लोक का मंगल शुद्ध शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिरला श्रीधर स्वामी ने उदाहरण दिया है कि जो उत्तम उसे करना और जो उत्तम न उसका त्याग करना मंगल या शुभ। उत्तम कार्य करने का अर्थ है जो कुछ भी भक्ति करने के अनुकूल हो, और उसके त्यागने का अर्थ है भक्ति करने में जो प्रतिकूल हो। हम अपने कृष्ण भावना में आंदोलन में इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए चार निषिद्ध अवैध विषयी जीवन, मादक द्रव्य सेवन, दुष्ट क्रिया तथा मांसाहार का बहिष्कार करते हैं और प्रतिदिन कम से कम 16 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप और 3 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं। इस प्रकार वह ब्राह्मण संस्कृति और आध्यात्मिक शक्ति को अखंडित बनाए रख सकता है। यदि कोई भक्ति के इन नियमों का दृढ़ता से पालन करते हुए 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है, वह आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होकर अंततः श्री भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए पूर्णतया योग्य हो जाता है। क्योंकि वैदिक ज्ञान के अध्ययन करने या जानने का एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, अतः जो प्रारंभ से प्रयुक्त तिथि से वैदिक नियमों का पालन करता है वह परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण रूप को उसी प्रकार देख सकता है जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब अपने मुख को देखा जाता है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कोई ब्राह्मण इसलिए ब्राह्मण नहीं बन जाता कि वह जीवात्मा है या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, अपितु उसमें शास्त्र वर्णित समस्त गुण होने चाहिए और उसे अपने जीवन में ब्राह्मण नियमों का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार वह पूर्णतया कृष्ण भक्त बन जाता है और वह समझ सकता है कि कृष्ण क्या ब्रह्म संहिता में 5 इसका सुंदर वर्णन मिलता है कि भक्त इस प्रकार अपने हृदय के भीतर कृष्ण को अपने समक्ष देखता रहता है। प्रेमांजन छुरित भक्त विलोचने न संत सदैव हृदयेश विलोकयंती यम श्याम सुंदर वचिंत गुण स्वरूपम गोविंद मात पुरुषम तमहम भजा। कृष्ण का शुद्ध प्रेम विकसित होने से भक्त श्याम सुंदर श्री भगवान का अपने हृदय में निरंतर दर्शन करता रहता है। ब्राह्मण संस्कृति की यह परिपूर्णावस्था है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। एक बार फिर से श्लोक बोलिए। यत ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनम्। श्रद्धा तपो मंगलमौन संयमये। प्रेत मादर्श इवाव भासते। अधिकांश लोग नियमित श्रोता है, पृथ्वी महाराज का राष्ट्र के नाम संदेश चल रहा है, उसमें कई एक बात से आप लोग सुने हैं, कुछ बातें अवश्य ध्यान में ही भी होगी। इस प्रवचन का एक मुख्य हिस्सा है, पृथ्वी महाराज बतला रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हम पर ब्राह्मण और वैष्णव प्रसन्न। यदि ब्राह्मण और वैष्णव प्रसन्न होते हैं, यदि उनकी प्रसन्नता मिल गई, तो कर्मकांड से होने वाले जितने भी लाभ हैं, वैदिक अनुष्ठान करने से जितने भी लाभ हैं, वे सब मिल जाए। ब्राह्मण है, वैष्णव प्रसन्न हो गए, जीवन सार्थक हो जाता है। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के परपर्ट में भवार्थ में उद्धृत करते हैं, प्रसादे सर्व दुखान प्रसन्न चेत बुद्धि परिष्ठ। जब हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है और हमारी बुद्धि एक निष्ठ हो जाती है, तब हम अपने लक्ष्य को आसानी से पूर्णतापूर्वक सिद्ध कर प्राप्त कर लेते हैं। स्पृहा प्रकट कर रहे हैं पृथ्वी महाराज, ब्राह्मण और वैष्णव प्रसन्न, और उसी क्रम में ब्राह्मणों की महिमा होता है। जैसा कल आप लोग सुने होंगे, पृथ्वी महाराज कह रहे हैं कि अस्नात्यनंत खलु तत्व को विदय श्रद्धा रूपम यं मुख इच्छिन्न। भगवान अनंत है, इस अर्थ में कि उनके अनंत रूप है, उनका कोई सीमित रूप नहीं है। और तत्व को विदय जो इस तत्व के जानकार है, भगवान के स्वरूप को समझते हैं, तो वे विभिन्न देवताओं के नाम मंत्र बोलते हैं और अग्नि में आहुति डालते हैं। ये दूसरे देवता के नाम से मंत्र बोलते हैं, अग्नि में आहुति डालते हैं, यह भी भगवान की आराधना ही है। क्योंकि भगवान अनंत है, वे देवता लोग भी भगवान के ही अंग, वो भी एक तरह से भगवान की ही आराधना है। और श्रद्धा पूर्वक यज्ञ में आहुति डाली जाती है और भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, स्नात उसको खाते हैं। लेकिन नवई तथा चेतनया बहिष्कृत उदासन पारमहंस पर, लेकिन उतना चाव से नहीं खाते हैं जितना चाव से ब्राह्मणों के मुख से, ब्राह्मणों के मुख में आहुति डाला हुआ खाते हैं। स्वीकार दोनों करते हैं, यह नहीं कहा जा रहा है कि अग्नि में डाला हुआ आहुति स्वीकार नहीं, लेकिन नवई तथा वैसे स्वीकार नहीं करते, वैसे प्रसन्न नहीं करते जैसे कि ब्राह्मणों के मुख में डाला हुआ आहुति। क्या कारण है। अब अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण स्पष्ट है, चेतनया बहिष्कृति है, जो अग्नि है चेतना का लक्षण है, प्रकट नहीं है, चेतना के लक्षण से बहिष्कृत है। आग की लपट कोई संतोष नहीं व्यक्त कर रही है, कुछ डायरेक्ट आशीर्वाद नहीं दे रही है। इस अर्थ में चेतना से बहिष्कृत है, और जो चेतना युक्त अधिष्ठान है तो उससे भगवान को भी प्रसन्नता होती है, भगवान को प्रसन्नता होती है। और जो पूजक है, आराधना करने वाले हैं, उनको भी संतोष मिलता है, दोनों संतुष्ट होते हैं। आप गिरिराज धरण की लीला में सुनते हैं, जब नंद बाबा कृष्ण के कहने से गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ कर दी, पूजा करने लगे, अब भगवान यह मंत्र दिए थे, भगवान इंद्र के पूजा को रोके थे, परंपरा से जो आ रही थी, तो भगवान का कर्तव्य था कि ब्रजवासियों के मन में कोई असंतोष न हो, रूपी अनुग्रह गिरिराज जी का ही रूप धारण करके गिरिराज में प्रविष्ट हो गए, और जितना वे लोग भोग लगा रहे थे सब एकदम प्रकट खा गए। एकदम प्रकट खा गए सब ब्रजवासियों की श्रद्धा पर हरकृष्ण से खाने लगे, आकर नहीं यार तेरो देवता साचो है। हम लोग तो इतने दिन से पूजा कर रहे थे, लेकिन ऐसे प्रकट तो खाते हुए नहीं देखे, लेकिन ये तो प्रकट खा रहा है सब है, साफा कर दिया, और कोई कोई कहने लगा कन्हैया लेकिन तेरो देवता तो बड़ो भूखड़ है, हम लोगों को कुछ नहीं छोड़ा। तो भगवान कहे कि चिंता मत करो, दे देगा। शायद उसी के बाद ब्रजवासी लोग धैर्य नहीं रखते, गोपाष्टमी के दिन कृष्ण बलराम को भोग लगता है, ये नहीं कि सखा लोग धैर्य, पता नहीं सर सब कहा जाएगा तो क्या होगा, तो साथ साथ खाते रहते हैं। अब जो हो, इसमें शब्द दे रहे हैं चेतनया बहिष्कृति, अग्नि और ब्राह्मण का कंपेरिजन कर रहे हैं, तो एक शब्द दे रहे हैं कि ब्राह्मण चेतना से युक्त है, अग्नि चेतना से युक्त नहीं है, यह तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन चेतनया बहिष्कृत है, चेतना को कम से कम संत कर दिया गया है, इतना तो निश्चित है। तो जितना ब्राह्मणों के मुख से प्रसन्न होते हैं, ब्राह्मणों के मुख से आहुति से, उतना चाव से अग्नि के मुख से नहीं कह रहे। अब एक प्रश्न होगा, ये ब्राह्मण का लक्षण क्या है? जब तक लक्षण वक्ता स्पष्ट न करे तब तक एक समस्या है ना, कि विवाद छिड़ जाए। तो ब्राह्मण के कुछ लक्षण को यहाँ बतला रहे हैं। हम का जो प्रस्तुत श्लोक है इसमें ब्राह्मणों के लक्षण को बतलाया गया है। यद ब्रह्म नित्यम विरजम सनातन श्रद्धा तपो मंगल मौन संयम समाधिना विभ्रते हार्थ यत्रेद मादर्श इवाभासते। ब्राह्मण का मुख्य लक्षण दे रहे विभ्रते, यत्र समाधिना सनातन वे सनातन वेद को धारण करते हैं। मुख्य लक्षण वेद को धारण करते हैं। विभ्रति मतलब धारण करते। अच्छा, वेद को धारण करने का क्या अर्थ है? वेद को धारण करने का अर्थ है वेद का पाठ करते हैं, अभ्यास करते हैं। पा रहे हैं कि वेद को कैसे धारण करते हैं? यद ब्रह्म नित्यम विरजम सनातन। देखिए, हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं और सब कुछ को केवल अपने सीमित दृष्टि से नहीं देखना है। वक्ता क्या कह रहा है उस पर भी एक बार विचार कर लेना चाहिए। यहाँ जो प्रथम खंड है, श्लोक का प्रथम पाद है, यद ब्रह्म नित्यं विरजं सनातन, इसमें आचार्यों के मत में भिन्नता है। सिद्धांत में कोई विरोध नहीं है, लेकिन आचार्यों के मत में भिन्नता है। यहाँ यद ब्रह्म, यद का संबंध पीछे से जुड़ा गया है। ब्राह्मण के मुख से भगवान ज्यादा संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण का चर्चा हुआ, उसका संबंध इस श्लोक से जुड़ा है। इस संबंध को दो रूप में जोड़ा जा सकता है। यज्ञ का अर्थ हुआ क्यों, क्यों ब्राह्मण के मुख से आहुति से ज्यादा प्रसन्न होते, उसके कारण के रूप में यज्ञ का संबंध। या दूसरा संबंध जोड़ सकते हैं कि जिन ब्राह्मणों की चर्चा कर रहे हैं उनका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद इसी संबंध को लिया। मूलतः एक आचार्य हैं वीर राघव, हम समझते हैं कि उनसे श्रील प्रभुपाद लिए। श्रीधर स्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती था से यहाँ श्रील प्रभुपाद इस अंत को नहीं ले। यद ब्रह्म नित्य, इसका अर्थ कि जिससे ब्राह्मण की बात कही जा रही है वो सनातन परंपरा चल रही है। इसको श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्राह्मण संस्कृति। यद ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ब्रह्म कुल, मतलब ब्राह्मणों की परंपरा संस्कृति की नित्य। और विरज, विरजम का अर्थ है कि राग द्वेष से रहित, या भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणापाट, और ये जो चार दोष है, समय के अभाव में हम इन दोषों का वर्णन नहीं करेंगे, स्थान की भक्ति जानते रहते हैं, इससे मुक्त है। तो ऐसे ब्राह्मण सनातन मतलब वेद, श्रद्धा तप मंगल मौन संयम, वेद को धारण करने के लिए एक शब्द दे रहे हैं कि समाधि। समाधि पूर्वक वेद को धारण करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, उसका पाठ करते हैं। अच्छा, समाधि कैसे लगती है? समाधि एकाएक नहीं लग जाएगी। समाधि तो ऊपर की अवस्था है न, उसके साधन के रूप में वर्णन कर रहे हैं श्रद्धा तप मंगल मौन और संयम, ये समाधि के साधन। इसी से मैं कह रहा था कि डायरेक्ट श्लोक से आप देखेंगे तो ज्यादा क्लियर। श्रद्धा का क्या अर्थ है? श्रद्धा का अर्थ है कि वेद के अध्ययन में, अध्यापन में, उसके अभ्यास में त्वरा कर आलस्य का त्याग कर। यहाँ श्रद्धा का यह अर्थ है, वेदाभ्यास करना है, गीता का पाठ करना है, उसके लिए आलस्य का त्याग करना होगा। बड़ी स्फूर्ति चाहिए, स्मार्ट होना पड़ेगा। वहाँ भी केवल क्रिकेट खेलने के लिए स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी त्वरा चाहिए। तो इस अर्थ में श्रद्धा और तप, तप तो आवश्यक है, तप की परिभाषा ही है स्वधर्म पालन के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी इच्छा से जिस कठिनाई को स्वीकार करते हैं उसको तप। वेद का अभ्यास करना है तो निद्रा का जल्दी त्याग करना होगा, स्नान कर लेना होगा, भले ही जाड़ा का दिन है। तो इस अर्थ में तप। और एक शब्द है मंगल, मंगल बहुत महत्वपूर्ण शब्द। मंगल शब्द की परिभाषा श्रीधर स्वामी किए हैं और विचार किसी को ग्रहण किए हैं। मंगल प्रशस्ता चरणम नित्यम अप्रशस्तस्य वर्जन एता ही मंगलम प्रोक्तम ऋषिविस्तत्व दर्शी। प्रशस्ता चरणम नित्यम, जो फेयर चीज है, कलंक रहित है, धब्बा रहित है, उज्ज्वल है, उसे उज्ज्वल आचरण का प्रैक्टिस कर, उज्ज्वल आचरण को धारण कर नित्य। और अप्रशस्तस्य वर्जन, जिस आचरण में कलंक है, जो कलंकित करने वाला व्यवहार है, उसको सदा सर्वदा त्याग कर। एता ही मंगलम प्रोक्तम ऋषिभिः तत्त्वदर्शिनः, इसी को जो तत्त्वदर्शी ऋषि है मंगल प्रशस्त, श्रील प्रभुपाद मंगल विधान किए हैं। इसका कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए कम से कम चार चीज का त्याग अति आवश्यक है। यदि ये चार चीज मांस भक्षण, अवैध स्त्री संग, जुआ, नशा, ये सब का कोई त्याग नहीं करता है, उसका आचरण प्रशस्त और वह वेद का ज्ञाता नहीं बन सकता। ऐसे व्यक्ति की पूजा की बात, ऐसे व्यक्ति के मुख में आहुति की बात लेना नहीं। प्रभुपाद मिनिमम प्रशस्त आचरण को रखे कि कम से कम चार इग्निटी पुरुषों को गौरव करना है। और भी प्रशस्त है, अप्रशस्त से वर्जन इसको छोड़ना और प्रशस्त आचरण को पॉजिटिव है। 16 माला नाम जप कर, पता नहीं कभी कभी अब मैकेनिकल अध्ययन करने लगते हैं। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ तो स्पष्ट शब्द आया है 16 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर। अब इस पर न लड़ाई छिड़ जाए कि प्रभुपाद जी ऐसा कहे हैं, 16 बार का अर्थ समझना चाहिए 16 माला, हिंदी में यही लिखा है 16 बार। तो यह प्रशस्त आचरण है, यह निम्नतम है, यही सब है। तो कह रहे हैं कि श्रद्धा तप मंगल मौन संयम, इसके साथ ही मौन, मौन का अर्थ भी यहाँ समझना है। जो अध्ययन करने में बाधक वार्ता है उसका ध्यान, जो कास्ट मौन लेकर के बैठ गया वो क्या अध्ययन करे। अध्ययन के लिए तो वेद का पाठ करना होता है उच्चारण के ऊपर, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समय सब, और खूब बोलना होता है। ये मौन के खिलाफ नहीं, जो वेद के अध्येता हैं उनके विषय में तो लिखा गया है मेथक के समान टर टर करते रहते। ज्यों ही गुरु जी का नियम पूरा हुआ, गायत्री पूरा कर लिए और उनका संकेत पा करके मेथक जैसा पाठ करते हैं। पाठ बहुत आवश्यक है। यहाँ मौन का अर्थ है कि जो अध्यात्म विक्षेप डालने वाला है उस वार्ता का त्याग कर दे। कोई श्लोक पाठ किए और उस पर आपस में विचार कर रहे हैं कि मौन भंग नहीं हो रहा है, लेकिन अब टॉपिक उठ गया न्यूज़पेपर से या टीवी से, तो कितना घंटा चलेगा इसकी कोई सीमा नहीं। तो इस विषय में एकदम जिसको वेद का अध्ययन करना है मौन, उसका पूरा पूरा परित्याग और समाधि नहीं संयम। संयम का अर्थ है अपने इंद्रियों को संयमित रखना, सम और दम। संयम का अर्थ है सम और दम। सम का अर्थ होता है अपने मन को केंद्रित करना, दम का अर्थ होता है इंद्रियों को संयमित करना। वे इंद्रियों को संयमित करना, इसका क्या अर्थ है, क्यों जरूरत पड़ जाती है संयम का? इसका कारण यह है कि विषय के स्वरूप को समझना चाहिए। एक बार हमारा मन जिस विषय में चला गया तो वहां से खाली खाली नहीं आता है, वो विषय को लेकर के आया, और विषय को लेकर के आया तो मन में बैठ गया। अब मन में बैठ गया तो अब मन इंद्रियों उसको संस्कार के चलते इंद्रियां उधर भागती रहती। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, जिस व्यक्ति को शराब का नशा नहीं, जो एक बार भी शराब नहीं पिया है, उसको शराब कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोगों के लिए शराब एकदम प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो शराब पी चुके हैं अब उनकी क्या स्थिति होती है? देखिए, हम जब विश्वविद्यालय में थे हम लोग कम उम्र के थे, लेकिन उस समय भी थोड़ा तिलक लगाने से, पंडित बनने से, जप करने से छात्रों के प्रति श्रद्धा हो जाती है। कुछ हम लोगों से बहुत ही सीनियर स्टूडेंट थे, उन लोगों को शराब की आदत आकर के दुख रोते थे। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ छोड़ने की, नहीं छोड़ता। तो वे शराब पी चुके हैं, उधर इंद्रियां वो खींच रही है, तो उसको दो स्तर से रोकना होगा। एक तो मन को भी बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करना, और इंद्रियों को भी रोकना होता है, कभी कभी तो जबरदस्ती रोकना होता है। हम तो बात आने लगती है तो एक एक चीज निकलने लगता है, लेकिन समय बहुत कम है। हम देखे हैं कि इंद्रियां कैसे बाधित करती हैं। एक बार हम लोग ट्रेन से जा रहे थे, मुगल क्रय जा रहे थे, उठान ट्रेन में बैठे थे, एक स्त्री थी और उसके पति थे। उसके पति बार बार झोला के तरफ हाथ ले जा रहा था, वो डांटती थी, बार बार हाथ ले जा रहा था, डांटती थी। थोड़े देर तक ये रुकता था, फिर हाथ वैसे चला। मैं देख रहा था जैसे छोटा बच्चा क्या आईडी है, अभी मैं कंप्लेन कर दूंगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तब वह थोड़ा संयम, वो पति पत्नी दुखी थी, उसको पहुंचाने जा रहा था उसकी यह स्थिति। उसका कारण यह है कि शराब बार बार पिया, तो एक बार विषय का भोग करने से फिर विषय का संस्कार होता है और उधर खेलता रहता है। लेकिन जब जैसे तैसे रोक लेंगे, इंद्रियों को रोक लेंगे, तब वो धीरे धीरे मन का संस्कार कमजोर होने लगता है। और यदि रोक लिए कुछ दिन तक, तो कमजोर होते होते वैसे शांत हो जाता है जैसे दीपक जल रहा है और तेल समाप्त हो रहा है, तो दीपक बुझ जाता है। तो मन को स्थिर करने के लिए इंद्रियों का संयम जरूरी है। तो ऐसे वेद का अध्ययन करना होता है, और वेद का अध्ययन केवल वेद के दिखाने के लिए नहीं, सर्टिफिकेट के लिए नहीं, अर्थ दृष्टि स्पष्ट बार से अर्थ दृष्टि उनका ध्यान होता है, अर्थ को समझना। अर्थ का मतलब भगवान है या पुरुषार्थ है। वेद का श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं कि प्रयोजन भगवान कृष्ण का ज्ञान है। तो एक तरह से जो भगवान कृष्ण का ज्ञान कर लिया, वह वेद को समझ लिया, वही ब्रह्म। अब तो बहुत इसकी व्याख्या है, लेकिन समय तो समाप्त हो गया। मैं एक दो बात और कहकर पूरा करता हूँ कि अर्थ दृष्टि इतना अभ्यास करता है वास्तविक चीज को पकड़ने के लिए, और जब अर्थ का ज्ञान हो जाता है तब तो यह संसार, इदम का अर्थ है कि यह संसार का क्या स्वरूप है, वैसे उसको दिखने लगता है जैसे दर्पण में अपना चेहरा दिखता है। इदम का अर्थ संसार किया गया है, इदम का अर्थ भगवान किया गया है, इदम का अर्थ अपना स्वरूप किया गया है। तो जो निष्ठापूर्वक संयम पूर्वक समाधि पूर्वक वेद का अभ्यास करता है, उसका अर्थ पकड़ने लगता है, अर्थ का ज्ञान हो जाता है, तो यह संसार या अपना स्वरूप को वैसे दिखने लगता है जैसे दर्पण में अपना चेहरा दिखता है। अब ये उपदेश नहीं देना पड़ेगा कि संसार दुख इसे सुख नहीं, उसे स्वतः संसार का स्वरूप एकदम स्पष्ट दिखने लगता है। तो यह इस श्लोक का तात्पर्य है। और एक बात और मैं कहूँगा कि ब्राह्मणों के पूजा की बात कही जा रही है, तो ऐसे गुण है जो वेद के अभ्यास में लगा हुआ है, अर्थ समझ रहा है और अपने स्वरूप का साक्षात्कार करके उसके अनुसार व्यवहार कर रहा है। वास्तव में ये सब लक्षण है जिसको दान देने से, जिसको भोजन देने से भगवान अग्नि की अपेक्षा अधिक होता है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए तृतीय स्कंध 29वां अध्याय का 28 श्लोक से कुछ पढ़ना है। उसको मैं कहना चाहता था, लेकिन समय के अभाव में हरे कृष्ण।